आपका जो नुक्ता नजर जकात के बारे में है कि जकात इन एसेंस द कलेक्शन ऑफ जकात इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट। अच्छा, अगर ऐसा है तो पाकिस्तान की सतह पे जो हम टैक्सेस जो लागू किए हुए हैं गवर्नमेंट ने, क्या हम उसको एज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ जकात कह सकते हैं? ये मेरा पहला क्वेश्चन। दूसरी बात ये कि बहुत सी जगहों पे ये देखने में मुझे आता है कि हमारे यहाँ कॉरपोरेट सेक्टर में भी और प्राइवेटली भी टैक्स देने से लोग इज्तनाब करते हैं। ये जरूर कहते हैं जी हम चाहते हैं कि जी पाकिस्तान जो है वो बहुत तरक्की करे, दुनिया का बहुत बड़ा मुल्क हो जाए, लेकिन जकात दे देंगे, टैक्स नहीं देंगे, और साथ ये कहेंगे कि ये रिलीजियस ऑब्लिगेशन नहीं है। तो मैं चाहूंगा कि इसके ऊपर आप इन दोनों नुकात पर थोड़ा सा आप रोशनी डालें।
देखिए, पहले तो इस बुनियादी बात को समझ लीजिए कि ये टैक्सेशन की जरूरत क्यों पड़ती है। यानी इंसान की हवा और पानी की तरह जरूरत व्यासत की। इंसान का मामला यह है कि उसको अल्लाह ताला ने इरादा और इख्तियार देकर पैदा किया है। जब उसका गलत इस्तेमाल होता है तो लोगों की जान मार आबरू के लिए खतरात पैदा हो जाते हैं। चुनाचे इंसान ने यह फैसला किया कि वह अपने अंदर एक नज़्म हुकूमत या एक नज़्म इज्तमाही पैदा करे। नज़्म इज्तमाही जब भी पैदा किया जाएगा उसको चलाने के लिए अम्वाल की ज़रूरत पड़ेगी। आप इसके लिए अपील कर सकते हैं लोगों को, लेकिन आम तौर पर उस अपील का जवाब आपके हस्ब मंशा नहीं मिलता। चुनाचे इंसानी तजुर्बात ने यह फैसला किया कि रियासत के लिए कोई इख्तियार होना चाहिए कि वो आपके कमाए हुए माल का कोई हिस्सा अपने लिए ले। यही टैक्सेशन। आपके इल्म में है कि इससे पहले दुनिया की तारीख में ये बादशाह की मर्जी पर मुनसर होता था, वो जितना चाहे ले ले, उसके कारिंदे आते थे, जो फैसला कर दिया गया नाफिज हो जाता था। अमेरिका में तहरीक चली नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, यानी अब गोया जमहूरी दौर आ गया, कौमी रियासतें बन गई। जमहूरी अदवार में यह फैसला किया गया कि पार्लियामेंट ये काम करेगी। मैं आपकी खिदमत में बरसों से अर्ज कर रहा हूं कि ये चूंकि सबसे बड़ी नजा है जो फर्द के और इज्तमाही इदारों के दरमियान पैदा हो गई है। ना, मैं पैसे कमाता हूं, माल मेरा है, मैंने जद्दोजहद की। आप कहते हैं कि इज्तमाही मफाद के लिए इतना रुपया, आप कहें कि इज्तमाही मफाद के लिए दो, मेरी मर्जी है मैं दूं, मेरी मर्जी है मैं ना दूं, मेरी मर्जी है मैं इतना दूं, मेरी मर्जी है कि मैं उससे कम या ज्यादा दूं। जब आप मुतय्यन करके कहते हैं कि ये दो वरना हम तुमसे जबरन ले लेंगे, तो इससे एक निज़ा पैदा होती है, कश्मकश पैदा होती है। ये जो कश्मकश है इसी को अल्लाह ताला ने हल कर दिया और ये फैसला कर दिया कि अब इसका फैसला ना बादशाह किया करेंगे, ना कोई तबका करेगा, ना कोई पार्लियामेंट करेगी, इसका फैसला मैं कर रहा हूँ, मैं कायनात का खालिक हूँ। ज़कात इसी का नाम है। इसमें दर हकीकत खुदाई फैसला कर दिया गया है कि रियासत को अपने मामलात चलाने के लिए ये कुछ है जो लेने का हक है, इसके सिवा उसको कोई चीज़ लेने का हक नहीं है। ये तो है असल मसला। आलमी सतह पर भी हम क्या इसका तारुफ इस तरह करा सकें, क्या ये बता सकें, क्या इस पर उठने वाले सवालात का जवाब दे सकें, वो एक बिल्कुल अलग बहस है।
तो मैं आपकी बात से जो बात समझा हूं कि एक इस्लामी रियासत में जो टैक्स का वर्ड यूज करें या जकात का वर्ड यूज करें, दोनों सब्स्टिट्यूट वर्ड्स हैं।
जी बिल्कुल ऐसे ही है। यानी जकात की नौइयत अलबत्ता यह है कि वह अपनी असल के लिहाज से इबादत है, क्योंकि खुदा की तरफ से आई है। इस वजह से रियासत हो या ना हो मुझे वो हक अदा करना है, लेकिन जब रियासत वजूद में आएगी तो वो ये हक रखती है कि मुझसे बिलजबर वो ले ले। चुनाचे रिसालत में आप सरसन ने ऐसे किया, आपके बाद खुलफाए राशिदीन ने ऐसे किया। इब्न खुलदून अपने मुकदमे में एक इस्लामी रियासत और एक गैर इस्लामी रियासत का फर्क यही बयान करता है कि गैर इस्लामी रियासतें टैक्स लगाती हैं और इस्लामी रियासतें ज़कात आयद करती हैं। फर्क यही बयान किया उसने। तो इस वजह से ये अल्लाह का कायम करदा, अल्लाह का मुकर्रर करदा टैक्स है। यानी दो हैसियतें हैं, अपनी हकीकत के एतबार से ये इबादत है, अपने अमली इजहार के लिहाज से ये हुकूमत का हक है जो आपको उसको देना होता है। जब वो मांग दिया तो आप इनकार नहीं कर सकते। ये है असल मसला। अब जाहिर है कि इसका शऊर नहीं है, ये बात उस तरह वाजे नहीं है, तो हुकूमतें टैक्स लगाती हैं। वो हमारी हुकूमत भी लगाती है, वो अमेरिका भी लगाता है, बरतानिया भी लगाता है, एक रवायत है चली आ रही है। तो इस वजह से मैंने बरसों पहले से ये राय दे दी थी कि जो लोग अपनी ज़कात का हिसाब करके उसको टैक्स में से मिनहा करना चाहें वो कर सकते हैं, उनकी तरफ से वो अदा हो जाए।
ये तो हमने इस्लामी रियासत की बात की। जो पाकिस्तान से बाहर मुसलमान रहते हैं वहाँ पर जो टैक्स के रेट्स हैं वो 30-40% तक है, क्या ये सहूलत उन लोगों के लिए भी यकसा है जो आपने बयान की है?
हर हुकूमत को कायल करना पड़ेगा, सहूलत तो सबके लिए है। यानी देखिए ना, बाहर की हुकूमतें हैं तो उनको भी ये पैगाम पहुंचाने की जरूरत है कि इस मामले का फैसला इस कायनात के परवरदिगार ने कर दिया है और ये पैगाम हमको पहुंचाना चाहिए। लेकिन उनको भी वो रियासतें वही सहूलतें दे रही हैं, बल्कि उससे बढ़कर दे रही हैं जो हमारी रियासत देती है। تو اس لیے سب کے لیے ایک ہی قاعدہ ہے، وہ بھی اپنی زکات کو اس پہ منع کر سکتے ہیں، یہ بھی کر سکتے ہیں.
اور اس میں امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ اس کا مطلب ہے کہ جو لوگ ہمارے معاشرے میں ٹیکس ایویژن کرتے ہیں وہ گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں،
اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ اللہ کا ایک حق ہے، اتنا تو ان کو لازمن ہی دینا ہے، اس کے سوا وہ ایک ریاست کے شہری ہیں، انہوں نے ایک معاہدہ کیا ہوا ہے. تو ہمارا دین ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ آپ کسی ریاست کی شہریت بھی لیں، اس کے اندر ایک معاہدے میں بندھے ہوئے ہوں، پھر اس کی خلاف ورزی بھی کریں. قرآن مجید کی جو آخری سورہ ہے جس کو عہد و میثاق کی سورہ کہنا چاہیے، سورہ مائدہ، آپ کے معلوم ہے کہ وہ شروع یہاں سے ہوتی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، ایمان والوں سب سے بڑھ کر تمہیں عہد معاہدے کی پابندی کرنی ہے. آپ جب یہاں رہتے ہیں یا آپ امریکہ میں جا کے قدم رکھتے ہیں تو آپ اصل میں ایک معاہدے میں بندھے ہوئے ہوتے ہیں. جب آپ معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو آپ دینی لحاظ سے بھی ایک گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں، بلکہ بعض حالات میں یہ کبیرہ گناہ بن جاتا ہے. تو اس لیے یہ کام تو کبھی نہیں کرنا چاہیے، البتہ ایک قانون غلط ہو سکتا ہے، اس کو تبدیل کرانے کی جدوجہد کرنی چاہیے.
ایک لاجک جو عام طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم ٹیکس اس وجہ سے نہیں دیں گے کہ گورنمنٹ جو ہے اس کے اندر کرپشن اور بہت ساری لیکیجز ہے، تو کیا یہ دلیل جو ہے آپ کے خیال میں یہ قابل قبول ہے؟
یہ جو یہ لوگ بھی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں ان کے اندر یہ ہمت نہیں ہوتی کہ وہ کھڑے ہو کر کہیں کہ میں نہیں دے رہا، وہ اس کے لیے جھوٹ بولتے ہیں. اگر کسی نے یہ کام کرنا ہے تو اسے میدان میں کھڑا ہونا چاہیے، عزیمت اور استقامت کے ساتھ کھڑے ہو کے کہنا چاہیے کہ میں نہیں دیتا، اس لیے کہ تم غلط لیتے ہو، اور پھر اس کے نتائج بھگتنے چاہیے. تو یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، اس کے لیے معاف کیجیے گا، میرے دین میں جھوٹ کی کوئی گنجائش